नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 43 कृष्ण द्वारा कुवलिया पीठ का वध। तो अभी तक हमने सुना कि कंस की रंगशाला में सब दर्शक आ गए हैं और कंस महाराज भी आ गए हैं, सबसे ऊंचे मंच पर बैठे हुए हैं और कंस के पहलवान भी आ गए हैं, चाणूर मुष्टिक कोट सल टोसल और जो बाजे हैं वो भी बजने शुरू हो गए हैं और पहलवानों को बहुत उत्साह भी आ रहा है। लेकिन कौन नहीं है? कृष्ण बलराम नहीं है। कृष्ण बलराम नहीं है क्योंकि कृष्ण बलराम कंस के किसी भी आदेश का पालन नहीं करते हैं और कंस के आदेश का बाकी सब पालन कर रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सब कंस के आदेश का पालन कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण बलराम हर काम उल्टा करते हैं। जहां कंस का आदेश होता है तो वहां वे जो है हमेशा अवज्ञा करते हैं, कंस की अवज्ञा करते हैं। जिस धनुयज्ञ के लिए बुलाया कंस ने, उस तो धनुष को तोड़ दिया जाकर के, और जिन्होंने विरोध किया उनको मारा पीटा। इस प्रकार से सब कार्य, कंस का धोबी था, जब कहा कि राजा के कपड़े हैं तो एक ही हाथ में चिरोड़ा दिया उसका और कपड़े छीन लिए और कुछ कपड़े फेंक दिए सड़क में। इस प्रकार से कंस का अपमान करते हैं, कंस की अवज्ञा करते हैं। तो अब हुआ क्या, कृष्ण बलराम बड़े आराम से अपना आ रहे हैं, जैसे कि सबसे बड़े बॉस होते हैं, अपने टाइम पर आते हैं, सब लोग उनकी प्रतीक्षा करते हैं। और वास्तव में कृष्ण बलराम को ही मार डालने के लिए ये सब हो रहा था, सब तैयारियां हो रही थी और सब तैयारियां हो चुकी हैं और कृष्ण बलराम की प्रतीक्षा हो रही है। अब कृष्ण बलराम जो है क्या करते हैं, सुखदेव को समय कहा, हे परंतप, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर जब कृष्ण बलराम ने अखाड़े में नगाड़े की ध्वनि सुनी, जब नगाड़े की ध्वनि सुनी तो विचार किया कि अब चलना चाहिए। अब चलना चाहिए। तो वहां देखने के लिए गए कि क्या हो रहा है वहां पर, सब उनका इंतजार कर रहे हैं और उनकी इच्छा हुई चलो अब देखें क्या हो रहा है वहां पर। अथ कृष्णश्च रामश्च कृत शौच परम तप मल्ल दुंदुभि निर्घोषम श्रुत्वा द्रष्टुमुपेयुः। तात्पर्य में लिखा है कि श्रीधर स्वामी ने कृत शौचो शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, कृष्ण और बलराम ने दो दिन पूर्व शुद्धि की थी और अपने अपराध से मुक्ति पाई थी, अतः उन्होंने तर्क किया कि यद्यपि हमने धनुष भंग द्वारा और अन्य साहसिक कार्यों से अपनी शक्ति का परिचय दे दिया है, फिर भी हमारे माता पिता बंदी गृह से मुक्त नहीं हो पाए। कंस पुनः उन्हें मारने का प्रयत्न कर रहा है, अतः भले ही वो हमारा मामा क्यों ना हो, उसका वध कर देना हमारे लिए अनुचित नहीं होगा। इस प्रकार से कृत शौचों का मतलब यही है कि पहले से ही उन्होंने शुद्धि कर्म कर लिया, कंस को तो मारना है ना, तो वो अगर अशुद्ध कर्म भी माना जाए तो पहले से उन्होंने शुद्ध कर्म कर लिया कि आगे कोई प्रायश्चित नहीं करना उनको। जैसे कि रावण को मारने के बाद फिर राम ने प्रायश्चित किया, अश्वमेध यज्ञ किया, है ना, तो ऐसा कुछ चक्कर नहीं है कृष्ण बलराम का। जो कुछ भी उनको करना था शुद्ध कर्म पहले से कर लिया है, कंस को मारने के बाद कोई शुद्ध कर्म नहीं करना है, ये विचार किया तो श्रीधर स्वामी की ठीक है इस प्रकार की है। अब भगवान कृष्ण अखाड़े के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, उसको कहते हैं रंग द्वार, रंग द्वार में तो उन्होंने देखा कि कुवन्यपीठ नामक हाथी अपने महावत की प्रेरणा उनका रास्ता रोक रहा है। सब पहले से सुनियोजित योजना है, पूर्व नियोजित कृष्ण बलराम को मार डालने की योजना सब बनी हुई है। रंग द्वारम समासाद्य तस्मिन्नागम अवस्थितम् अपश्यन् कुवलयातीतम् कृष्णोऽम्बच्छ प्रचोदितम्। तात्पर्य लिखा है, महावत ने अखाड़े में कृष्ण के प्रवेश को रोककर अपना द्वेषपूर्ण मनोभाव व्यक्त किया, क्योंकि कंस का कानून है, यहाँ पर कोई आवाज नहीं उठा सकता कंस के विरुद्ध। और ये जो है कंस का हाथी है, और महावत जो है ना कृष्ण बलराम को मार डालना चाहता है, और कोई सुनवाई नहीं होने वाली। कृष्ण बलराम इतने सुंदर हैं और मथुरा वासियों के तारे हैं, आंखों के तारे हैं, जीवन है, लेकिन कृष्ण बलराम को मार डालने के लिए जो योजना बनी है इसके विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठा सकता हूँ। तो कृष्ण बलराम पहले से तैयार है। तू डाल डाल मैं पात पात। जिसका जैसा भाव है भगवान पहले से तैयार रहते हैं। ये था माम प्रपद्यंते कांत भय भजाम हम, शत्रुता की भावना है तो दूनी शत्रुता मेरे अंदर है। तो जब देखा कि वो तैयार है तो कृष्ण ने अपना फेंटा पहले से कसा, बातचीत करने के पहले ही अपना फेंटा कसा, क्योंकि अपना फेंटा कसे है हाथी और महावत ऐसे तैयार कर रहा है। तो कृष्ण ने अपना फेंटा कसा कमर का और घुंघराले बालों को पीछे बांधा, तो ये बाल है ना आगे आते हैं तो कभी आँखों के आगे आते हैं तो फिर देखने में बाधा पड़ती है, इसलिए बालों को पीछे बांध लिया, किसी प्रकार की बाधा ना पड़े। और महावत से मेघ जैसी गंभीर गर्जना में ये शब्द कहा, भगवान की जो आवाज़ हमेशा मेघ के समान गंभीर होती है, हर जगह ये कहा गया है। बध्वा परि चरम सौरि समय है कुटिलाल वाचे हस्ति पंबाचा मेघनादे गभीरयान। तात्पर्य लिखा है कि कृष्ण लड़ने की तैयारी कर रहे थे, सुलभिष्ठनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान ने अपनी जैकेट उतार दी, जैकेट जो कि थोड़ा ढीली ढाली है उसको उतार दिया और अपनी पेटी कसी अपने बालों को पीछे बांध लिया। अच्छा अब बातचीत करना शुरू किया, और कैसे बातचीत करना शुरू किया, बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है, अपनी ओर से कोई कमी नहीं, किस तरह से निर्भीकता से। उसने कहा, रे महावत रे महावत, तुरंत एक और हो जा। एक और हो जा और हमें निकलने दे, यदि तुम ऐसा नहीं करेगा तो आज ही मैं तुझे तेरे हाथी समेत यमराज के पास भेजवा दूंगा। कंस का महावत है, कंस का हाथी है, तो सीधे जो है दान करके बोले, अम्बच्छा अम्बच्छ मार्गम देह पक्ष में माचरम मैं के सकुंजरम जाजा नयामी यमे साधन। इस प्रकार धमकाए जाने पर महावत क्रुद्ध हो उठा, उसने अपने भयंकर हाथी के अंकुश जमाई, वह आक्रमण करने वाले कृष्ण पर काल मृत्यु और यमराज के समान प्रतीत हुआ। तीन तुलनाएं दी गई हाथी की, एक तो काल, दूसरा मृत्यु और तीसरा यमराज। ये बहुत भयानक है, ये जो हाथी है ये बहुत ही भयानक था। एवं निर्भर हाथी पिछले जन्म में कौन था, बलि महाराज के 100 पुत्रों में से एक ये था, मंदगति नाम का दैत्य, और बहुत ही बलवान था, शरीर से बहुत स्वस्थ था। रंगनाथ जी की यात्रा में जब
लोग यात्री लोग जा रहे थे, वो चल रहा था और कैसे हाथों को हिलाता हुआ झूमता हुआ चल रहा था, मस्तानी चाल से चल रहा था और यात्रियों को गिरा रहा था, गिराते हुए चल रहा था, बहुत बल के घमन में भरा हुआ। तो रास्ते में तृप्त मुनि हुई तो उसके हाथ के धक्के से गिर गए, और जब गिर गए तो उनको गुस्सा आ गया, और गुस्सा आ गया तो उन्होंने साथ दिया क्योंकि अपने बल का बहुत घमंड है, और हाथी की चाल से चल रहा है तो हाथी बन जा। गुस्सा फिर उसको होश आया कि अरे मैंने तो बड़ा अपराध कर दिया, तो तृप्त मुनि के चरणों में गिरा और तृप्त मुनि से माफी मांगी कि आप साप देने में समर्थ हो, वरदान देने में समर्थ हो, मैं आपकी इस महिमा को नहीं जानता था। तो तृप्त मुनि प्रसन्न हो गए तो बोले मेरा साप तो व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन तुझे मैं वरदान देता हूँ ऐसा कि तू भी याद करेगा कैसा वरदान दिया मैंने, तो तू हाथ से जरूर बनेगा, लेकिन भगवान कृष्ण के द्वारा मथुरा में तेरा उद्धार होगा। तो इसके अंदर 100,000 हाथियों का बल था, जब ये मन में जब नाम का बलि का पुत्र था 100,000 हाथियों का बल था। तो फिर अगले जन्म में कुबल्यपीठ हाथी बना, तो विंध्याचल पर्वत में जो है ये हाथी बना, इसमें 10,000 हाथियों का बल था। तो जरासंध ने इसको पकड़वाया था, 100,000 हाथियों से पकड़वाया। तो सुनो, एक हाथी को पकड़ने के लिए कितने हाथी लगे? 100,000 हाथी लगे। 100,000 हाथियों से पकड़ करके फिर इसको जो है आपने बस में किया। तो जरासंध का ये हाथी था कुबल्यपीठ। लेकिन जब कंस की शादी हुई जरासंध की दो पुत्रियों से अस्ति और प्राप्ति, तो दहेज में जरासंध ने इस हाथी को दिया कंस को, सबसे कंस का हाथी था। तो बहुत ही मतलब विशाल पर्वत के समान ये भयानक हाथी था। तो इसने क्या किया, कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। अब सोचिए कि कितना ये भयानक दृश्य है, कृष्ण बिल्कुल छोटे से बालक हैं, सबसे कोमल बालक हैं और ये सबसे विशाल हाथी है और भयानक हाथी है। आक्रमण किया और अपने सूंड से तेजी से कृष्ण को पकड़ लिया, लेकिन कृष्ण सरक गए, उसके सूंड से सरक गए और उस पर एक घूसा भी जमा दिया। इससे उसको क्या लगा कि जो मेरा प्रतिद्वंदी है वो कमजोर है, अपनी चालाकी से सरक गया। तो उसको लगा कि इसमें शक्ति नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चालाकी है ना, तो मैं अपनी शक्ति से ना कृष्ण को फिर कर सकता हूँ, कुछ मार सकता हूँ। तो उसको घूसा मार करके उसके पैरों के बीच में जा करके छिप गए, अब उसको देख नहीं सकता है। उसके घूसे मारा उसी के पैरों के बीच में जाके छिप गए जहाँ वो देख ही नहीं पाए। हरिंद्र समम विद्रुप्तैन करेण तरसा गृहिणी राज्यगलिता सोमम निहत्यां विश्वनीयतैन। हाँ, अब भगवान केशव को ना देख पाकर क्रुद्ध हुए उस हाथी ने अपनी ध्यान शक्ति से उन्हें खोज निकाला। हाथी के पास ध्यान शक्ति है बहुत ज्यादा, सूंघने की शक्ति है, तो सूंड से सूंघता था है ना, तो सूंड को हर जगह वो ले जा सकता है, जहाँ देख नहीं सकता वहां भी अपने सूंड को ले जा सकता है। तो सूंड से टटोल करके उसने और सूंघ करके समझ लिया कि कहाँ है कृष्ण, कहाँ है, खोज लिया। और फिर से भगवान को अपनी फूल के अग्रभाग से पकड़ा, किंतु बलपूर्वक भगवान ने फिर अपने को छुड़ा लिया। संक्रुद्ध घ्राण दृष्टि परामृतम कुण सप्रत तात्पर्य लिखा है, भगवान कृष्ण ने हाथी को अपने को पकड़ने दिया जिससे वह उनसे लड़ता रहने के लिए प्रोत्साहित हो। इसलिए अपनी कमजोरी में भगवान दिखाते हैं कि इसे पकड़ लिया कृष्ण को और कृष्ण कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि उसको उत्साह मिले है ना। अगर शुरू में ही मार देते तो फिर वो लड़ाई का मजा क्या होता, है ना,
इसलिए भगवान कमजोरी के साथ लड़ते हैं, जैसे कि उस हाथी को प्रोत्साहन मिले कि हाँ मेरे अंदर शक्ति बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ ये चालाक है जो खिसक जाता है, इधर भागता उधर भागता है इसलिए उसको प्रोत्साहन मिलता है लड़ाई का। एक बार जब कोवली अपनी जिस तरह गर्वित हो था तो कृष्ण ने अपनी पराशक्ति से उसे फिर निष्फल बना दिया। अब क्या किया कृष्ण, तब भगवान कृष्ण ने बलशाली कोवली अपीड की पूंछ पकड़ी, अब पूंछ पकड़ी तो उसको लगता है कि कमजोर है, मेरा शत्रु कमजोर है और पूंछ पकड़ रहा है मेरी, कृष्ण ने पूंछ पकड़ी और खेल खेलने से 25 धनुष दूरी तक वैसे ही घसीट ले गए जिस तरह गरुड़ किसी सांप को घसीटता है धनुष आप समझ लीजिए दोनों हाथों को फैला करके और छोर तक, इतना कितना हुआ ये 2.5 मीटर, तो एक धनुष का मतलब करीब 2.5 मीटर है ना, तो 25 धनुष का मतलब कितना हुआ 62 मीटर है ना, 2.5 मीटर है ना, तो 62 मीटर के करीब जो है ना उसको घसीटा, पीछे की तरफ घसीटा, और कैसे, जैसे गरुड़ किसी सर्प को घसीटता है, गरुड़ जी का शरीर छोटा है पर सांप बहुत बड़ा होता है, बड़े बड़े सांपों को गरुड़ जी घसीटते हैं। पुच्छे प्रग्रहिया की बलम धनुषा पंच विंशतिम विचकर्ष यथानागम सुपर्ण यदलीलयान। जब भगवान अच्युत ने हाथी की पूंछ पकड़ी तो वह बाएं और फिर दाएं घूमने का प्रयास करने लगा, तो उसको पीछे शक्ति नहीं मिल रही ना, इसलिए वो घूमने के प्रयास कर रहा है, लेकिन बहुत बड़ा हाथी है इसलिए घूमना आसान नहीं है उसके लिए, सीधे चलना आसान होता है लेकिन घूमना आसान नहीं है, जिससे भगवान उल्टी दिशा में घूमने लगे, तो जैसे वो घूमता है तो भगवान पीछे हो जाते हैं, बिल्कुल हमेशा उसके पीछे रहते हैं इधर घूमता है तो उधर घूम जाते हैं भगवान, इधर घूमता है इधर घूम जाते हैं तो पीछे रहते हैं उसको, इससे क्या पता चलता है, उसको लगता है कि शत्रु जो है कमजोर है लेकिन चालाकी बहुत, चालाक बहुत है मेरा शत्रु है जिस तरह है कोई बालक किसी बछड़े की पूंछ खींचने पर घूमता हो, किस तरह से घूम रहे सपरिया वर्तमान सम्य दक्षिण तो च्युता बभ्रा में भ्रम माणे में गोवत्ते नेव बालकः। तब कृष्ण उस हाथी के सामने आए, अब यहां तो बुरी हालत हो गई उसकी, तो भगवान क्या करते हैं सामने आ गए और सामने आकर के चपत लगा करके भाग गए मार दिया और फिर भागे। अब फिर वो सोचता है कि कितना बदमाश है, भागता है भागता है, इसका मतलब क्या है कि कमजोर है नहीं, नहीं सामने टिक नहीं सकता इसलिए भाग रहा है, लेकिन बदमाश बहुत है, तो भगवान उसको मार करके भागे। फिर अब कोवलिया फिर उनका पीछा करने लगा, वह उन्हें प्रत्येक पद पर बारंबार छूने का इस तरह प्रयास करता किंतु कृष्ण बचकर निकल जाते। हर पग पर वो सोचता है कि अब मैंने इनको पकड़ लिया, वो तो मारता अपना, क्या करता दांत मारता ना अपना है ना, तो वो हर पग पर सोचता है कि अब मार दूंगा इनको हर पग पर, और कृष्ण बच करके निकल जाते हैं, थोड़ा सा सरक जाते हैं, तो सोचता है कि बहुत चालाक बहुत ज्यादा है उन्होंने उन्हें उसे झांसा देकर गिरा दिया, झांसा देकर के गिरा दिया। कैसे गिराया झांसा देकर के, आगे आएगा ततो भी मुखम मभ्येद के पाणिना हत्ये मारणम प्राद्रवन पातयामासं स्पृश्यमानः पदे पदे। कृष्ण झुटलाते हुए खेल खेल में पृथ्वी पर गिर पड़ते और पुनः तेजी से उड़ जाते, अब उसकी और हालत खराब कर दी। आगे कृष्ण गिर गए तो वो सोचता है कि थक करके गिर गया ये, तो दांत मारता है बड़ी तेजी से जमीन में, तब तक कृष्ण उड़ गए और दांत लगा उसके जमीन में, तो और उसकी हालत खराब हो रही है और सोचता है कि बदमाश बहुत ज्यादा आएंगे। कुरधारी ने कृष्ण को गिरा समझकर उन पर अपने दांत को घूमने चाहे, किंतु उल्टे दांत धरती से जाकर के टकरा गए। सधावन क्रीडया भूम पतितम क्रोधो दंताभ्याम कुहन स्थिति। अब ये सब जो भगवान कपट कर रहे हैं इस हाथी के साथ इसका कारण क्या है? जैसे कंस में कपट है, दिखाता है बहुत अच्छा है और करता क्या है? बदमाशी। उसी प्रकार से कृष्ण कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसको बहुत धोखा दिया उस हाथी को। अब क्या हुआ, जब हस्तिराज कौवल्या पीठ का पराक्रम व्यर्थ गया तो वह निराशाजनक क्रोध से जल भुन उठा। निराशा में गुस्सा और ज्यादा आया उसको, क्योंकि बहुत बलवान था और ये कमजोर है। कमजोर व्यक्ति जो ना बलवान को जो है हराए, बलवान व्यक्ति को हराता है और चालाकी से हराता है, तो बलवान को फिर बहुत गुस्सा आता है। निराश भी हुआ और बहुत गुस्सा भी हुआ, किंतु महावत ने उसे अंकुश मारा और उसने पुनः एक बार कृष्ण पर क्रुद्ध होकर आक्रमण कर दिया। अंकुश मारने का मतलब क्या है? महावत प्रोत्साहन दे रहा है कि मारो शत्रु को, ऐसे मत छोड़ो। सविक्रमे प्रतिहते कुंजरेन्द्रो मनसीतमानो महामात्र कृष्णम मध्य द्रवन। अब मधुसूदन परम भगवान ने अपने ऊपर आक्रमण करते हुए हाथी का सामना किया, एक हाथ से उसके सूंड पकड़कर कृष्ण उसे धरती पर पटक दिया। समापसंतम आसादिम भगवान मधुसूदन गृह पाणिना पातयामास भूतले। आप सोचिए इतना बड़ा हाथी था, जब गिरा तब उठना मुश्किल है। इतना बड़ा हाथी, पहाड़ के समान हाथी था, उठना बड़ा मुश्किल था। आप उसको पटक करके भगवान क्या करते हैं? तब भगवान हरि शक्तिशाली सिंह के ही समान आसानी से हाथी के ऊपर चढ़ गए, उसका एक दांत उखाड़ लिया और उसी से उस पशु को उसके महावधों को मार डाला। पति तस्य पदाक्रम मृगेन्द्र दंत मुस्पाक्यम हस्य हस्य पांचाहनम हरि। तो अभी तक भगवान ने किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया। इसके पहले जब धनुष तोड़ा था तो पूरी सेना शस्त्रों के साथ भगवान को घेर लेती है, उस समय भगवान के पास कोई शस्त्र ही नहीं था। तो भगवान ने क्या किया, वो टूटे धनुष के टुकड़े उठा लिए। जो धनुष तोड़ा था उसके दो टुकड़े मिल गए उनको, उसी से उन्होंने मार डाली पूरी सेना। और फिर वो धनुष के टुकड़े भी छोड़ दिए, अपना फिरा दे। अभी उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। अब यहाँ हाथी को गिरा करके क्या करते हैं? कोई हथियार तो है नहीं, तो दांत ही तोड़ दिया उसका। और दो दांत मिल गए, एक दांत कृष्ण को मिल गया, एक दांत बलराम को मिल गया। उसी दांत से ही हाथी को मारा और महावतों को मारा। फिर उस मरे हुआ हाथी को छोड़ करके और हाथी का दांत लिए भगवान कृष्ण अखाड़े में प्रविष्ट हुए। अपने कंधे में हाथी का दांत रखे, उस हाथी के रक्त पूरे शरीर में छिड़के हुए। उसकी खून की बूंदें पूरे शरीर में लगी हैं और पसीने की बूंदें भी शरीर में, उसकी खून की बूंदें और पसीने की बूंदें भी पूरे शरीर में लगी हैं और अपने ही पसीने के छोटी छोटी बूंदों से आच्छादित कमल मुख भगवान परम सुशोभित लग रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है भगवान का चेहरा। मृतकम दिव्य मुत्सृज्य दंत पाणे समाविशन संयत्त विषाणोत्रिण मद बिंदु भिरंकिता विरूढ़ वदनाम बोर हो बभो। हे राजन, भगवान बलदेव और भगवान जनार्दन दोनों ही उस हाथी के एक एक दांत को अपने चुने हुए हथियार के रूप में लिए हुए अनेक ग्वाल बालों के साथ अखाड़े में प्रविष्ट हुए। वृतो गोपय कतिपय बलदेव जनार्दनो रंगम विभीषतो राजन गजदंते वनायुध। अब देखा कृष्ण और बलराम अपने ढंग से आ रहे हैं, कोई मतलब उनके ऊपर शासन नहीं है, निरंकुश है, उसको कहते हैं निरंकुश। जैसे हाथी के ऊपर अंकुश होता है तो वो जो है बस में रहता है, लेकिन ये निरंकुश, इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। हाथी के दांत भी अपने कंधे में रख लिए और अपने घुसे, अपनी मर्जी से घुसे अखाड़े में। अब कृष्ण को सब लोग देख रहे हैं, लेकिन अलग अलग रसों में देख रहे हैं। जब कृष्ण अपने बड़े भाई के साथ अखाड़े में प्रविष्ट हुए तो विभिन्न लोगों ने कृष्ण को भिन्न भिन्न रूपों में देखा। अब देखिए, जो जैसे हैं कृष्ण को वैसा देख रहे हैं। देखिए, पहलवानों ने कृष्ण को देखा कैसा, वज्र के समान, वज्र के समान देखा। वज्र क्या है, वज्र पर्वत को भी चूर्ण कर देता है वज्र, तो कृष्ण को वज्र के समान देखा। और मथुरा वासियों ने कैसे देखा, मथुरा वासी जो अच्छे थे, अच्छे स्वभाव के थे, तो कृष्ण को क्या देखा, श्रेष्ठ पुरुष हैं, बहुत ही अच्छे हैं कृष्ण। जो पहलवान थे उनका शरीर पत्थर के समान था, तो कृष्ण को देख रहे हैं वज्र के समान। मथुरा वासी जो अच्छे थे उन्होंने देखा कृष्ण को कैसे, श्रेष्ठ पुरुष के रूप में देखा। स्त्रियों ने साक्षात कामदेव के रूप में, जो जवान स्त्रियां थी उनको कृष्ण बहुत आकर्षक लग रहे हैं, कामदेव के रूप में। और ग्वालों ने अपने संबंधी के रूप में देखा, जो ग्वाल बाल सखा हैं कृष्ण के, वो कृष्ण को क्या समझ रहे हैं, हमारे समान, अपने संबंधी के रूप में देखा। और दुष्ट शासकों ने क्या देखा, बहुत भयानक दंड देने वाले हैं ये, जो बदमाश राजा होते हैं शासक, वो क्या देखते हैं कि बहुत भयानक, बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं ये, दंड देने के लिए तैयार हैं। और उनके माता पिता ने क्या देखा, अपने शिशु के रूप में, जो माता पिता के समान थे लोग। कृष्ण के माता पिता भी देख रहे थे, वो जो कारागार जहां बंद थे वसुदेव देव की, तो उनको भी कुछ सुविधा मिली थी कि उस स्थान को देखें जहां उनके बच्चे आएंगे। और फिर प्रजा में भी बहुत से माता पिता जैसे स्त्री पुरुष थे जो कि देख रहे थे, तो शिशु के रूप में देखा। और भोजराज कंस ने देखा कृष्ण को कैसा, मौत के रूप में, साक्षात मौत आ गई मेरी। कंस को मौत के रूप में दिखाई दे रहे। और मूर्खों ने देखा भगवान को विराट रूप में, बहुत ही उद्दंड है, जो मूर्ख थे उन्होंने देखा। और योगियों ने देखा क्या, परम सत्व के रूप में देखा। ये परम तत्व, परम सत्य जो योगी लोग हैं उनको देख रहे हैं कि योग के परम लक्ष्य यही है, इस प्रकार से देखा। और वृष्णियों ने देखा अपने आराध्य देव के रूप में, जो वृष्णि वंशी थे, जिस वंश में भगवान ने जन्म लिया है, और जो देवर्षि नारद ने बताया था कि जितने देवता हैं सब यदुवंश में, वृष्णि वंश में जन्म ले चुके हैं, तो वे वृष्णि वंशी जो है कृष्ण के सारे को देख रहे हैं कि कृष्ण का कैसा आदेश होता है, वैसा काम करने के लिए तैयार हैं। वृष्णि वंशियों ने कृष्ण को देखा अपने आराध्य देव के रूप में, कंस से अब डरते नहीं है। यहाँ कृष्ण आ गए तो कंस से उनको कोई डर नहीं है, कृष्ण जो भी आदेश देंगे करने के लिए तैयार हैं। जब तक कृष्ण नहीं थे तब तक वो कंस के इशारे पर काम करते थे, डरते थे, लेकिन अब उनके आराध्य देवता आ गए हैं, अब जो आदेश मिलेगा, जो इशारा मिलेगा करने के लिए तैयार हैं।
मल्लानाम मत निर्णाम नरवराम स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सजनो सताम क्षिति भजाम तासाम पपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतेर विराट विदुषाम तत्सम परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवते विदितो रंगम गताम साग्रजहम।
तात्पर्य लिखा है कि श्रीधर स्वामी ने श्लोक उद्धृत किया है, ऐसा श्लोक जिसमें कृष्ण के प्रति 10 विभिन्न रसों की व्याख्या मिलती है, 10 प्रकार के रस हैं। एक तो है रौद्र रस, रौद्र रस जो पहलवानों ने अनुभव किया, कृष्ण को देखा तो रौद्र, रौद्र रस मतलब रुलाने वाले हैं, बहुत खतरनाक हैं कृष्ण, रौद्र रस में देखा। और पुरुषों ने देखा अद्भुत रस में, अद्भुत हैं ये, प्रत्येक चीज अद्भुत है, इनका रूप अद्भुत है, इनके गुण अद्भुत हैं, इनकी चाल अद्भुत है, बोली अद्भुत है, सब अद्भुत है। और स्त्रियों ने अनुभव किया श्रृंगार रस में कृष्ण का, और ग्वालों ने हास्य रस में अनुभव किया कृष्ण को, उनको हंसी आ रही है, जो कुछ भी कार्य कृष्ण कर रहे हैं उनको बड़ी हंसी आ रही है, तो वो देख रहे हैं कृष्ण की वीरता को, कृष्ण में कितना साहस है, कृष्ण कितने निर्भीक हैं। और माता पिता ने अनुभव किया किस रस में, करुण रस, जो माता पिता थे या माता पिता के समान थे वो करुण रस में, और कंस अनुभव कर रहे हैं किसमें, भयानक रस में, कंस ने देखा कृष्ण को भयानक रस में, और मूर्खों ने देखा बीभत्स रस में कि कितने वो दंड हैं और कैसे गंदी हालत में घुसे हैं, यहाँ पर जरा भी सभ्यता नहीं है, हाथी के दांत होना लेकर के अपने और खून, दांतों से खून निकल रहा है वो कंधे में रखे हुए विभत्स रस में। और योगियों ने शांत रस में अनुभव किया, परम सत्य हैं, परम तत्व हैं, योग के चरम लक्ष्य हैं शांत रस में। और वृष्णिवंशियों ने प्रेमा भक्ति में दर्शन किया। रौद्रोद्भुत श्रृंगारो हास्यम वीरोदया तथा भयानक सभी भत्ता शांत सप्रेम भक्ति कहा। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती इशारा करते हैं कि पहलवानों, कंस और दुष्ट राजाओं जैसे व्यक्तियों ने कृष्ण को कैसा देखा, घातक के रूप में या क्रुद्ध और धमकी देने वाले के रूप में देखा, क्योंकि वे भगवान के वास्तविक पद को समझ पाने में असमर्थ थे, क्योंकि भगवान के विरोधी हैं ये, कौन पहलवान और कंस और जो दुष्ट राजा थे इनको। वस्तुतः कृष्ण हर एक के मित्र और शुभ चिंतक हैं, किंतु वे हमें दंड देते हैं क्योंकि हम उनके विरुद्ध उत्पात करते हैं। जिस तरह हम उन्हें दंड देने वाले के रूप में देख सकते हैं, कृष्ण या ईश्वर तो वास्तव में दयालु हैं, और जब वे हमें दंड देते हैं तो वह भी उनकी कृपा होती है। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने निम्नलिखित वैदिक वाक्य उद्धृत किया है। रसो वैसा रसम ही वायम लब्ध आनंदी भवती, वे साक्षात रस हैं, और जो इस रस को प्राप्त कर लेता है वह आनंदी अर्थात आनंद से पूरित हो जाता है। ये मंत्र है तैत्तरीय उपनिषद 2.7.1। रस शब्द की व्याख्या के लिए उन्होंने एक और श्लोक उद्धृत किया है। व्यतीत भावना वर्तम इस चमत्कार भारभू हृदय सत्वोज्वले बाघम सदते सरसो मतहा। जो कल्पना से परे है, आश्चर्य से बोझिल है, जिसका सत्व गुण से चमत्कृत हृदय में आस्वाद किया जाता है वो रस है। सत्व गुण से चमत्कृत हृदय में जो आस्वाद होता है वो रस है। जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तार से विवेचना की है, मुख्य रस पांच हैं। कौन कौन से? शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। और गौण रस सात हैं: आश्चर्य, हास्य, वीर, दया, रौद्र, भयानक और विभत्स। इस प्रकार कुल कितने रस हुए? 12। और इन सब का चरम लक्ष्य साक्षात श्री कृष्ण है। दूसरे शब्दों में हमारा प्रेम और वात्सल्य वास्तव में कृष्ण के लिए होता है। दुर्भाग्यवश अपने अज्ञान के कारण जिद में आकर हम भौतिक संबंधों से जो कृष्ण से जुड़े हुए नहीं हैं सुख और प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और इस तरह जीवन में निरंतर हताशा आ जाती है। हाँ, जितने भी संबंध हैं कृष्ण के साथ करो तो आपको रस प्राप्त होगा। हाँ, चाहे शत्रुता भी करो कृष्ण से, है ना, मित्रता, शत्रुता, सब कृष्ण में रस है। इस भौतिक संसार में कोई भी रस आप पाने का प्रयास करते हो, किसी के साथ दुश्मनी में या किसी के साथ दोस्ती में, लेकिन निराशा मिलती है, रस नहीं मिल सकता। इसका सरल उपाय है कृष्ण की शरण में जाना, कृष्ण से प्रेम करना, कृष्ण भक्तों से प्रेम करना और सदा के लिए सुखी बनना। आगे, जब कंस ने देखा कि कुबलयपीठ मारा गया है और दोनों भाई अजय हैं, तो हे राजन, वह चिंता से उद्विग्न हो था। अब कंस को कैसे पता चला कि कुबलयपीठ मारा गया? कैसे पता चला? क्योंकि उसके दांत जो है ना, दोनों ने ले रखे थे। कंस को तो किसी ने सूचना नहीं दी कि कुबलयपीठ मारा गया, कोई सूचना देने वाला था ही नहीं, है ना। सब मार दिए कृष्ण, सब मार दिए द्वार में ही, है ना, तो कोई था ही नहीं सूचना देने वाला। लेकिन जब घुसे वो अंदर और दांत लिए थे, खून से सने दांत लिए थे, तो कंस ने देखा कि कुबलयपीठ मारा गया है। इस प्रकार से देखा उसने, तो चिंता से उद्विग्न हो गया, बहुत भयभीत हो गया। हतम कुबलयपीठम दृष्ट्वा तावपी दुर्जयो कंसो मनस्यपि तदा भृतं उद्युजिते नृप। अब ये जो दोनों भगवान हैं कैसे लग रहे हैं? नाना प्रकार के आभूषणों को धारण किए हुए हैं, मालाओं को धारण किए हैं, कई प्रकार की मालाएं धारण किए हैं और कई प्रकार के वस्त्रों को धारण किया हुआ है। विशाल भुजाओं वाले ये दोनों भगवान कैसे मालूम पड़ते हैं? दो अभिनेताओं के समान, दो हीरो, दो हीरो के समान मालूम पड़ते हैं। कहां पर हैं? कंस की रंगशाला में दो हीरो आए हैं। उत्तम वेश धारण किए हुए, अखाड़े में शोभायमान हो रहे थे। निस्संदेह उन्होंने अपने तेज से सब देखने वालों के मन को अभिभूत कर लिया। तौरे जतो रंग गतो महाभुजो विचित्र वेशांभरण श्रगंबरो यथा नता उत्तम वेश धारिणो मना क्षिपंतो प्रभया निरीक्षता। हे राजन, जब नगरवासियों तथा पास के जिलों से आए लोगों ने दीर्घाओं में बैठे अपने अपने स्थानों से दोनों परम पुरुषों को देखा, तो प्रसन्नता से उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उनके मुखमंडल खिल उठे। वे अतृप्त होकर उनके मुखों का दर्शन पान करते रहे। कौन दर्शन कर रहे हैं? कृष्ण का, मथुरा के नगरवासी और पास के जिलों के जितने निवासी हैं। बहुत बड़ा जो है ना ये आयोजन हुआ था, बहुत बड़ा उत्सव हुआ था, तो आंखों से पी रहे हैं कृष्ण के रूप का, कृष्ण के सौंदर्य का पान कर रहे हैं आंखों के द्वारा। निरीक्षता उत्तम पूर्व सौजना मंजल सीता नागर राष्ट्र का नृप प्रहर्ष वेगो कलिल कलिते क्षणानना अपूर्ण तृप्ता नय नय सदाननम। तृप्त नहीं हो रहे हैं कृष्ण के मुख को पीते हुए, आंखों से उनको तृप्ति नहीं हो रही है। अब कैसा लग रहा है? ऐसे कृष्ण को देख रहे हैं कैसा लग रहा है, मानो वे अपनी आंखों से कृष्ण और बलराम को पी रहे हैं। आंखों से पीना चाहिए भगवान को, विधि यह है भगवान को पीना चाहिए आंखों से, और अपने जीभों से उन्हें चाट रहे हों ऐसा मालूम पड़ रहा है, अपने नथनों से उन्हें सूंघ रहे हों और अपनी बाहों से उनका आलिंगन कर रहे हों, भगवान के सौंदर्य का स्मरण करके, उनके चरित्र का स्मरण करके, माधुरी का और बहादुरी का स्मरण करके दर्शकगण वर्णन करने लगे, एक दूसरे से बताने लगे जो पहले उन्होंने जो है देखा था और सुना था कृष्ण के बारे में, वो आपस में चर्चा करने लगे। जैसे दर्शन किया और श्रवण कीर्तन शुरू हो गया वहां पर। पिबंत एव चक्षुर्भ्याम लिहंत एव जीवयाम जिघ्रंत एव नासाभ्याम श्लिष्यंत एव बाहुभिः ओचो परस्परम तेव यथा दृष्टम यथा श्रुतम संरूप गुण है माधुर्य प्रागल्भ्य स्मारिता। तात्पर्य में लिखा है कि स्वाभाविक है कि जो लोग मल्ल उत्सव देखने के लिए मथुरा में एकत्रित हुए थे, उन्होंने नगर में कृष्ण और बलराम के कार्यकलापों की ताजी खबरें सुन रखी थी कि किस तरह उन दोनों ने यज्ञ धनुष को तोड़ा और किस तरह राक्षसों को हरा कर कौवल्यपीठ हाथी का वध किया। अब जबकि वे सभी कृष्ण और बलराम को अखाड़े में प्रवेश करते देख रहे थे तो उनकी महान आशाओं की पुष्टि हो गई थी। कृष्ण समस्त सौंदर्य की मूर्ति हैं, समस्त यश की मूर्ति हैं, समस्त ऐश्वर्य की मूर्ति हैं। अतः अखाड़े में एकत्र सारे लोगों ने उनके विषय में जो कुछ सुन रखा था और अब जो देख रहे थे उसका गुणगान करते हुए परम संतुष्ट हो रहे थे। अब देखिए उस समय खबर जो है तुरंत फैलती थी, तुरंत पूरे नगर में कृष्ण जो ना कौवल्यपीठ हाथी का वध किया, तुरंत पूरे नगर में खबर फैली तुरंत, जैसे करंट है ना, करंट लगता है ना, थोड़ी सी अगर दीवार नम हो उसमें करंट लग जाए तो पूरी दीवार में करंट आ जाता है ना, ऐसे मथुरा में समाचार फैलता बहुत तेजी से। आजकल रेडियो से भी और टेलीविजन से भी उतनी जल्दी समाचार नहीं फैलता जितना कि उस समय समाचार फैलता था। क्यों? क्योंकि लोगों में कितना संगठन था है ना, और लोगों के पास जो है सब इतने काम नहीं होते थे है? कि इतना काम में व्यस्त हैं, सबके पास समय रहता था, जीवन बहुत सुखी था, फुर्सत में जो है ना हमेशा रहते हैं, और कोई भी बात अगर घटना हो तो तुरंत समाचार फैलता था पूरे नगर में, ऐसा जीवन था लोगों का है ना। तो समय कोई रेडियो समाचार पत्र नहीं था कि कृष्ण का समाचार मथुरावासियों को मिलता है ना। तो अभी लोग सोचते हैं कि रेडियो से समाचार पत्रों से जो है बड़ी जल्दी खबर फैलती है, उससे जल्दी खबर फैलती थी उस समय। अब आपस में क्या बातें कर रहे हैं कृष्ण बलराम के बारे में, ये दोनों बालक निश्चय ही भगवान नारायण के अंश हैं जो इस जगत में वसुदेव के घर में अवतरित हुए हैं। अभी तक ये पता था कि कृष्ण नंद के पुत्र हैं, बलराम तो वसुदेव के पुत्र हैं है? लेकिन कृष्ण का तो यही पता था कि नंद के पुत्र हैं, लेकिन जब नारद जी ने बताया कंस को कि कृष्ण भी देवकी का आठवा पुत्र हैं है ना, तो फिर ये समाचार जो है बड़ी तेजी से फैला कि दोनों वसुदेव जी के पुत्र हैं। ये तो भगवता साक्षात हरेर नारायण से ही अवतीर्णा विहान सेन वसुदेव से विस्मनी। अब क्या चर्चा करते हैं, कृष्ण की तरफ इशारा किया उन्होंने और क्या कहते हैं कि इन्होंने माता देवकी से जन्म लिया और गोकुल ले जाए गए जहां भी इतने समय तक राजा नंद के घर में छिप कर बढ़ते रहे हैं। ये तब किले देवक्याम जातो नीतस्य गोकुलम काल में तम बसन गोड़ो बब्रदे नंद विस्मनी। और कृष्ण के बारे में पहले ही चर्चा उन्होंने ये की कि जैसे ही जन्म लिया तुरंत वो गोकुल में चले गए और छिप करके बड़े हुए हैं। और क्या किया इन्होंने, इन्होंने पूतना का प्राणांत किया और चक्रवात असुर का प्राणांत किया। चक्रवात असुर मतलब त्रिलावर्त, त्रिलावर्त चक्रवात, जो हवा चक्र के आकार की घूमती है, त्रिलावर्त, इसका वध किया है इन्होंने। यमनार्जुन वृक्षों को गिरा दिया इन्हीं ने, और संघचूल का वध किया इन्होंने, केसी का वध किया और धेनु का वध किया, ऐसे असुरों का वध किया। जैसे धेनु का असुर का वध आद्यंत किसने किया, बलराम जी ने किया, लेकिन बातों में कुछ ना कुछ तो अंतर हो जाता है बातचीत में। पूतना ने नीतांतम चक्रवात दानव अर्जुनो दुर्घटा के थी धेन कौन ने चतन विधान। इन्होंने गऊं और ग्वालों को जंगल की आग से बचाया था। हाँ, गऊं और ग्वालों को जंगल की आग से बचाया था किस समय, हाँ मूंज के वन में जब गऊं चली गई थी तो आग लगी और सब बालक भी घिर गए और गऊं भी घिर गई, तो आग से बचाया इन्होंने। और काली सर्प का दमन किया था इन्होंने, अपने एक हाथ में सर्वश्रेष्ठ पर्वत को एक सप्ताह तक धारण किए रखकर इंद्रदेव के मिथ्या गर्भ को चूर किया, और इस तरह वर्षा हवा और ओलों से गोकुलवासियों की रक्षा की। गावा तपाला एतेन दावा में परिमोचिता कालियो नमिता सर्प इंद्रश्चा विमदा कृतः सप्ताह में के हस्तेन धृतोद्री प्रवरो मुना वर्ष माता सन्निभ्यश्चा परित्रातम च गोकुलम। और क्या कहते हैं मथुरावासी इनके बारे में, निरंतर हसीली चितवन से प्रसन्न और थकान से मुक्त करके इनके मुख मंडी को निहार निहार कर, अच्छा निरंतर हसीली चितवन से प्रसन्न और थकान से मुक्त इनके मुख मंडल को निहार निहार कर गोपियों ने समस्त प्रकार के कष्टों पर विजय प्राप्त की और परम सुख का अनुभव किया। कृष्ण का जो चेहरा है वो कैसा है, निरंतर हंसता है और थकान नहीं है कृष्ण के चेहरे में। गोप्यो नित्य मुदित हसित प्रेक्षण मुखम पश्यन्त्यो विविधान तापान तरन्ति स्मात्रम मुदान। तो जो पूर्ववासी हैं वे कृष्ण बलराम के बारे में चर्चा कर रहे हैं और क्या कहते हैं कि कहा जाता है कि इनके संरक्षण में यदुकुल अत्यधिक विख्यात होगा और संपत्ति यश और शक्ति अर्जित करेगा। वदम चने वंशोयम यदो सुबहु विस्तृता श्रियम यशो महत्वम चा लप्तते परिरक्षिता। तो भविष्यवाणी इन्होंने सुनी है, भविष्यवाणी सुनी है कैसे नारद जैसे जो ऋषि मुनि हैं वो बताते हैं, तो उन्होंने सुना है। और क्या सुना है कि यदुवंश बहुत विख्यात होगा इनके कारण से, और संपत्ति यदुवंश को संपत्ति शक्ति और यश सब प्राप्त होंगे। अब इतनी चर्चा तो कृष्ण की हुई, अब बलराम जी के बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं। ये कमल नेत्रों वाले उनके भाई भगवान बलराम समस्त दिव्य ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। इन्होंने वध किया किसका, प्रलंबासुर, वत्सासुर, बकासुर और अन्य असुरों का वध किया है। हाँ तो यहाँ थोड़ा अंतर हो गया ना, क्योंकि प्रलंबासुर तो मारा बलराम जी ने, लेकिन वत्सासुर कृष्ण ने मारा, बकासुर को कृष्ण ने मारा। अयम चाच्याग्रज श्रीमान रामा कमल लोचना प्रलंबो निहतो ये न वत्सको ये बकादयः। तात्पर्य लिखा है कि वस्तुतः यहाँ उल्लिखित असुरों में से दो का वध श्री कृष्ण ने किया था, बलराम ने नहीं। इसका कारण यह है कि जब आम जनता में कृष्ण के कार्यों की खबर फैलने लगी तो तथ्य इस अस्पष्ट होने लगे। ऐसी प्रवृत्ति आधुनिक समाचार पत्रों में भी देखी जाती है। हाँ, आप कुछ बताते हैं और समाचार पत्र कुछ और ही छापते हैं, है कि नहीं? इस तरह से होती है कि त्रुटि, भ्रम, प्रमाद, विपलता, करण पाटव, ये चार प्रकार के दोष जो है मानव की बुद्धि में है, इस कारण से होता है। तो जिस समय लोग इस तरह बातें कर रहे थे, तुरहियां गूंजने लगी और पहलवान चाणूर ने कृष्ण बलराम से ये शब्द कहे। चाणूर वो तो पहले से निश्चित था कि कृष्ण बलराम से बात करना है, नहीं तो वैसे तो लड़ाई होने वाली नहीं है, कुश्ती कैसे हो सकती है ना, तो वो कुछ बोलेंगे ही, तो उनको क्या बोलना है वो निश्चित था। जनेश्व एवं ब्रह्मांडेषु सूर्येषु निनदत्वचां कृष्ण रामो समाभाषे चाणूरो वाक्यम अब्रवीन। तात्पर्य में लिखा है चाणूर से प्रसन्नता सहन नहीं हुई, कृष्ण की इतनी प्रसन्नता जो हो रही थी वो सहन नहीं कर पाया, अतः उसको कुछ कहना पड़ा दोनों भाइयों से। अच्छा, तो चाणूर ने क्या कहा? हे नंद पुत्र, हे राम, तुम दोनों ही साहसी पुरुषों द्वारा आदरित हो, साहसी लोग तुम्हारा बड़ा आदर करते हैं और तुम दोनों ही कुश्ती लड़ने में निपुण हो, तुम्हारे पराक्रम को सुनकर राजा ने स्वतः देखने के लिए तुम दोनों को यहाँ बुलाया है, तुम्हारे बल की परीक्षा के लिए राजा ने स्वयं बुलाया है, क्योंकि सुना है कि तुम कुश्ती लड़ने में बहुत निपुण हो। हे नंद सुनो, हे राम, भवंतो वीर सम्मतो युधे कुशलो श्रुत्वा राज्ञा होतो दिदृक्षुणा। अब तुम्हारा कर्तव्य है क्या? राजा को प्रसन्न करना। राजा को प्रसन्न करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो अपने विचारों से राजा को प्रसन्न करना चाहिए, मतलब जो राजा के विचार हैं वही विचार आपके होने चाहिए, और अपने कर्मों से भी राजा को प्रसन्न करना चाहिए, और अपने शब्दों से राजा को प्रसन्न करना चाहिए, ऐसी बात बोलना चाहिए जो राजा को अच्छी लगे, है ना, मतलब मन, वाणी और शरीर तीनों से राजा को प्रसन्न करना चाहिए। हाँ, तो मन, वाणी और शरीर तीनों से राजा को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है ना, लेकिन यहाँ पर राजा वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, है ना। तो क्या कहते हैं कि अगर राजा को प्रसन्न किया जाए अपने मन, वाणी और शरीर से तो क्या होगा? अवश्य ही सौभाग्य प्राप्त होता है, किंतु जो लोग ऐसा नहीं कर पाते उन्हें विपरीत भाग्य का सामना करना पड़ता है, दुर्भाग्य प्राप्त होता है। प्रियम राज्ञा प्रकुर्वत्यः श्रेयो विन्दन्ति वै प्रजा मनसा कर्मणा वाचा विपरीतम मतोऽन्यथा। इसी प्रकार की नीति बेन की थी, भागवत में बेन का भी चरित्र है, बेन भी इसी प्रकार का था, सब प्रकार के अत्याचार कर रहा है, भगवान के विरुद्ध आचरण कर रहा है, तो क्या कहता है कि राजा ही तो भगवान, राजा के शरीर में ही सब देवता निवास करते हैं, राजा को प्रसन्न करो, और भगवान के विरुद्ध आचरण कर रहा है, लेकिन वास्तव में राजा जो है भगवान के समान माना जाता है, अगर वो भगवान का भक्त हो जो भगवान के आदेश का पालन करे, लेकिन ये लोग शास्त्र की एक बात को पकड़ लेते हैं और दूसरी बात को छोड़ देते हैं, राजा भगवान के विरुद्ध आचरण करे और फिर कहा जाता है मैं राजा को प्रसन्न करूं, है ना, तो ये समस्या है। आगे चाणूर कहता है, क्या कहता है कि सर्व विदित है कि ग्वालों के बालक अपने बछड़ों को चराते हुए सदैव प्रसन्न रहते हैं और विविध जंगलों में अपने पशुओं को चराते हुए खेल खेल में कुश्ती लड़ते हैं। नित्यम प्रमुदिता गोपा मत्स्यपाला यथा स्फुटम वनेशु मल्ल योद्धे न क्रीडंत चारयंती गान। हाँ, तात्पर्य लिखा है कि यहाँ चाणूर ये बतलाता है कि किस तरह दोनों भाई कुश्ती में निपुण बने हैं, تو آپ لوگ کشتی میں نپڑ کے ہو کیسے بنے ہو؟ کیونکہ آپ کے پاس کچھ کام ہی نہیں تھا. بچڑوں کو چلاتے ہو تو اپنے بچڑے گھاس کھاتے ہیں اور تمہارے تم کیا کرتے ہو؟ کشتی لڑتے ہو. تو ابھیاس تمہیں کیا ہے؟ کشتی لڑنے کا ابھیاس کیا ہے. ہاں تو کیا کہتا ہے؟ اتا جو راجا چاہتے ہیں وہی ہم کریں, اس سے ہمارے ساتھ سارے لوگ پرسن ہوں گے, کیونکہ راجا سارے جیووں سے سمنوت ہوتا ہے. تسمان راجیا پریم یوجم ویم چا کروا مہے بھوتانی نا پرسیدنتی سرو بھوتے میو نپہم. یہ سن کر بھگوان کرشن نے جو ہے سمے استھان کے انوسار بات کہی. کیسا سمے تھا, کیسا استھان تھا, اس کے انوسار بات کہی. حالانکہ چاہتے تھے جیسا اس نے کہا ویسے ہی چاہتے تھے, لیکن تو بھی انہوں نے کہا ایسا نہیں, کہا ویسا جیسا اچت ہے کہنا, ایسا کہا. تن سمیا بربیت کرشن دیش کالو چتم بچان یوجھ ماتمنو بھیشم منیہ مانو بھی نندیشان. تو بھگوان نے کیا کہا؟ یدپی ہم بنواسی ہیں کنتو ہم بھی کنس کی پرجا ہیں, بھوج راج کی پرجا ہیں, اتا ان کی اچھا پوری کرنی چاہیے, کیونکہ ایسے ویوہار سے ہم کو پرم لابھ ہوگا, ہمیں بہت فائدہ ہوگا اگر ہم راجا کی آگیا کا پالن کریں. ویسے کسی آگیا کا پالن نہیں کرتے, کنس کی کسی آگیا کا پالن نہیں کرتے, کہ اس آگیا کا تو ضرور پالن کریں گے کیونکہ اس میں ہم کو بہت لابھ ہوگا. پرجا بھوج پتے رس ویم چاپی ونی چرم سروا میں پریم نتیم تنا پرم منوگرہ. پھر کہتے ہیں ہم تو نرے بالک ہیں اور ہمیں سمان بل والوں کے ساتھ کھیلنا چاہیے. تو بھگوان کا سجھاؤ ہے کہ ہم بچے ہیں تو ہم بچوں کے ساتھ کھیلیں گے, ہمارے ساتھ جو بچے آئے ہیں ان کے ساتھ ہم کھیلیں گے, ہے نا. راجا کو پرسن کرنا ہے تو ہم سمرپت ہیں راجا کی اچھا میں, تو ہم کشتی لڑیں گے, کھیل کریں گے. کس کے ساتھ؟ ہمارے ساتھ میں جو بچے ان کے ساتھ کریں گے. اس کشتی پرتیوگتا کو اچت ڈھنگ سے چلنا چاہیے, جس سے درشکوں کو کسی پرکار سے ادھرم کا کلنک نہ لگے. درشکوں کو ادھرم لگے گا اگر جو ہے اچت دھرم اسی ڈھنگ سے اگر ہم لوگ کشتی نہیں لڑیں گے تو درشکوں کو بھی دھرم لے گا, لیکن ہاں تو اس سے پتا کیا چلتا ہے کہ اگر آپ اتیتا کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا ادھرم ہے, اس میں بھی اتیاچار کا جو ہے دنڈ ملتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں بالا ویم تلیہ بلے کریڈ شیامو یتوچتم مل سبھا سدا. اب چانور نے کہا, کیا کہا؟ تم واسطو میں نہ تو بالک ہو اور نہ کشور ہو اور نہ بلرام ہی بالک ہیں, بلرام بھی بلشالیوں میں سب سے شریشٹھ ہے. تم نے کھیل کھیل میں ایک ہاتھی کو مارا ہے جس میں ہزار ہاتھیوں کا بل تھا. نہ بالو نہ کشورس تم بلچا بلی نام لیلی ہتو یہ سہسر دوپین ستو بھیر. اتا تم دونوں کو بلشالی پہلوانوں سے لڑنا چاہیے, اس میں نشچے ہی کچھ بھی انیتی نہیں ہے. ہے برشن بنسی تم اپنا پراکرم مجھ پر آزما سکتے ہو اور بلرام مشتی کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. تسمان بھوتیام بلیبھر یودھویم نینوتر مئی وکرم واسنے برین سہ مستیکا. اس پرکار شریمد بھاگوت کے دسم اسکند کے انترگت کرشن دوارا کبلیہ پیٹھ ہاتھی کا بدھ شیرشک 43واں ادھیائے پورن ہوا. تو اس ادھیائے میں 40 شلوک ہیں. آج ہم نے یہ ادھیائے پورا پڑھا ہے. اب کسی کا کوئی پرشن ہے یا میں پرشن کروں؟ ان کا پرشن ہے کہ جب کنس ایک ایک گھٹنا سے دیکھ رہا تھا کہ اس کی مرتیو نکٹ ہے, پوتنا ماری گئی, اگاسر بکاسر سب مارے گئے, کبلیہ پیٹھ ہاتھی مارا گیا, تو تو اب کنس بھاگ کیوں نہیں جاتا ہے؟ اگر اپنی جان بچانا ہے تو کنس بھاگ کیوں نہیں جاتا ہے؟ اس کو اتر کون دے گا؟ کنس راجا ہے، اپنی پرتشٹھا کا بھی تو اس کو لوبھ ہے، پرتشٹھا کی بھی تو کام ہے، پرتشٹھا چلی جائے گی، ڈر بھی بہت اس کو لگا ہوا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ اس کو وشواس رہتا ہے کہ ہاں یہ میرے پہلوان مار ڈالیں گے۔ کبلے پیٹ ہاتھی میں مر گیا تو بھائی تو بڑھ گیا اس کا، ہے نا، لیکن ابھی 1% اس کو آتا ہے کہ میرے پہلوان مار سکتے ہیں کرشن کو، اور کچھ آشا جو ہے چاہے 1% سے کم ہو، لیکن اس کو اپنے اندر بھی کچھ آتا یا وشواس ہے کہ میں بھی کرشن کو مار سکتا ہوں اور اپنی سرکشا بھی کر سکتا ہوں، تلوار اور ڈھال سے اپنی سرکشا بھی کر سکتا ہوں اور کرشن کو مار بھی سکتا ہوں میں، ہے نا، تو اس کا یدپی بھے بہت بڑھ گیا، لیکن تو بھی اس کو جو ہے کچھ وشواس ہے، چاہے وہ 1% کیوں نہ ہو، لیکن وشواس ہے کہ کرشن مارے جا سکتے ہیں، ہے نا۔ اور کوئی پرشن؟ ان کا پرشن ہے کہ کنس کو پتا تھا کہ پچھلے جنم میں کال نیمی کے روپ میں تھا وہ، تو بھگوان وشنو نے مارا تھا اور اب بھگوان آئیں گے ماریں گے، تو جب اس کو بھے ہے اپنے جیون کا تو راج وغیرہ جو کچھ بھی ہو جانے دو، اس کو تو اپنے جیون کی رکشا کرنی چاہیے۔ یہ جو باتیں ہیں یہ کوئی ویکتی سوستھ بدھی سے سوچ سکتا ہے، جس کے اندر یہ سب کام نہ ہو، لوبھ نہ ہو، کام ہے لوبھ ہے، اس کارن سے ویکتی سوستھ نہیں ہوتا ہے اور گیان جو ہے ڈھک جاتا ہے، ہے نا۔ گیان انت سے بہرنا، کام لوبھ یہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں گیان کو ڈھک دیتی ہیں، اس لیے ویکتی جو ہے نا جان بوجھ کر کے بھی جو ہے نا وہ نہیں جانتا ہے، دیکھتے ہوئے بھی وہ نہیں دیکھتا ہے اور کام کر رہا ہے، جیسے پتنگا جان بوجھ کر کے آگ میں گھس جاتا ہے اور جل جاتا ہے، مر جاتا ہے، ہے نا۔ اسی پرکار سے بدھی ٹھکانے نہیں ہے، ہوش نہیں ہے اس کو، اس طرح سے کنس کو جو ہے اس کو اپنے راجا ہونے کا بھی ابھیمان ہے، اس کے اپنے بل کا بھی ابھیمان ہے، اس نے کتنی پرسدھی پراپت کی ہے، تو اس کو اس بات کی بھی چنتا ہے کہ میں آج تک یدھ میں کبھی بھاگا نہیں ہوں، میں کیسے بھاگ سکتا ہوں، اندر اندر ڈر لگا ہوا ہے، لیکن اوپر وہ جو ہے اپنے ابھیمان کو چھوڑتا نہیں ہے۔ آسا پاس تیرا بدھا، گیتا میں بھگوان کہتے ہیں سینکڑوں آساؤں کے بندھن سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے اندر ابھی بہت آسائیں ہیں، اور اس نے پھر اپنی آسائیں بتائی تھیں اکروش جی کو کہ کرشن بلرام کو یہاں بلا کر کے مروا ڈالوں گا، پھر تو کیا ہے، پھر تو میرے پتا اگرسین ہیں ان کو بھی مروا ڈالوں گا، اور جتنے بھی یادو ہیں جو میرے ورودھی ہیں ان کو مروا ڈالوں گا، پھر تو کیا ہے، بس میرے سسر جراسندھ ہیں وہ رہیں گے پرتھی میں، اور میرے متر دیوید ہیں اور سمراسر ہیں، بس پھر کیا ہے، پوری پرتھوی میں اسروں کا شاسن رہے گا۔ اس پرکار کی آساؤں میں جو ہے وہ بندھا ہوا، آسا پاس تیرا بدھا، تو سینکڑوں آساؤں کے بندھن سے بندھے رہتے ہیں، اس کارن سے ہل ڈل بھی نہیں پاتے ہیں وہ لوگ۔ دھنیواد گرنتھراج شریمد بھاگوتم کے جگت گرو شیلا پربھوپاد کے شری شری رادھا پارسارتھی للتا وشاکھا کے شری شری گورنتائے بھگوان کے شری شری